अर्पिता के ऐसे बोलने पर जयराज उसे गुस्से से घूरने लगा। आंखें दिखाते हुए उसने कहा, क्या मतलब है आपका? अर्पिता ने गंभीर होकर कहा, आप हमारे कहने का मतलब जानते हैं। बच्चे के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे कंसीव करेंगे? दोनों को मनमुटाव भुलाना होगा, तभी परिवार आगे बढ़ा सकते हैं और आपके राज परिवार को वारिस दे सकते हैं। पिछले 2 सालों में आज पहली बार अर्पिता ने सीधे इस बारे में बात की थी। जयराज हैरान रह गया। शायद उसे अर्पिता का इतना बोल्ड होना उम्मीद नहीं था, लेकिन उसकी भी सहन शक्ति जवाब दे गई थी। आखिर वो बेवजह कितने ताने सुनेगी? जयराज ने गुस्से से कहा, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे हमने पहले कभी बच्चों के लिए कोशिश नहीं की। कितनी बार कोशिश की है, लेकिन कमी तुम्हारे अंदर है तो हम क्या करें? हमें नहीं लगता कि ये संभव है, और बार बार कोशिश करने से भी तुम कभी गर्भवती हो पाओगी। जयराज की बात सुनकर अर्पिता की धड़कनें रुक सी गईं। हैरानी से जयराज की तरफ देखते हुए उसने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें भगवान पर भरोसा है, जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन प्लीज़ आप ऐसे हार मत मानिए। ये कहकर अर्पिता ने अपना गुस्सा शांत किया और जयराज का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ हमारे खातिर एक बार कोशिश करिए, प्लीज़। ये कहकर अर्पिता जयराज के गले लग गई। जयराज ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अर्पिता के कंधे पर रखकर उसे दूर धकेलते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या कर रही हो? दूर हटो। हमें तुम पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी, समझी? इसलिए इस तरह बार बार हमारे करीब आने की कोशिश मत किया करो। हम तुमसे कितनी बार बोल चुके हैं, हमें अब तुम में 1% का भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ जाओ। ये कहकर जयराज कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन अर्पिता उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे रोकते हुए बोली, जब आपको हम में इंटरेस्ट ही नहीं था तो फिर आपने हमसे शादी क्यों की? मना कर देते, क्यों हमारी ज़िंदगी बर्बाद की? और छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों हमें अभी भी इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में बांध कर रखा है? अर्पिता की बात सुनकर जयराज को गुस्सा आया। उसने अर्पिता को घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप, हमारे रास्ते से हटो, हमें तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। अर्पिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हटेंगे, आज आपको हमारे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा, और अगर आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो चलिए अभी के अभी अपनी मम्मी से बात करिए और उन्हें बताइए कि आप ही हमारा साथ नहीं देते, हम भला अकेले ही क्यों सबके ताने सुने। अर्पिता की बात सुनकर जयराज उसके करीब आया और उसने अर्पिता का गला दबोचते हुए कहा, आजकल तुम्हारी जुबान ज्यादा ही चलने लगी है, भूल जाती हो क्या? हमने ये शादी सिर्फ अपने घर वालों के लिए की थी, हमें शादी वाले दिन से ही तुम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ना ही तुम पसंद थी, और रही बात अभी तुम्हारे साथ रहने की तो हम सिर्फ तुम्हारे घर वालों की वजह से चुप हैं, वरना कब का हमने तुम्हें छोड़। इतना बोलते बोलते जयराज चुप हो गया। तभी अर्पिता रोते हुए बोली, चुप क्यों हो गए? बोलिए ना जो भी आपके मन में है, आज बोल दीजिए। जयराज बोलने जा ही रहा था कि उसने खुद को रोकते हुए मन में कहा, अरे नहीं, ये हम क्या करने जा रहे थे? अगर हमने इन्हें ज़्यादा दुखी कर दिया तो ये अपने भाई और माँ को ये सारी बातें ना बता दें, और अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि हम उनकी बेटी के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं तो वो लोग तो हमें जिंदा काट देंगे। उसे इस तरह सोचते देखकर अर्पिता ने कहा, क्यों रुक गए, बताइए? अर्पिता को बोलते देखकर जयराज ने गुस्से में दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखा। उसने उसके कंधों को कसकर झकझोर दिया और उसे बेड की तरफ धक्का दे दिया और खुद कमरे से बाहर चला गया। अर्पिता वहीं बेड पर गिर गई और तकिया पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वो वहीं सो गई। अगले दिन सुबह मासा राजमहल के डाइनिंग एरिया में अभिमन्यु के साथ नाश्ता कर रही थी। तभी उन्होंने अभिमन्यु से पूछा, अभिमन्यु आपने अपनी फ्लाइट बुक कर ली है ना, और इप्सिता आपके साथ ही जाएगी ना? अभिमन्यु ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ माँ, आज रात की ही फ्लाइट है और इप्सिता हमारे साथ ही जाएंगी। मासा ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, तो इन 8-10 दिनों का काम और आपने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं क्या? अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मासा, हमने अपनी ज़रूरी 2-3 मीटिंग शाम में शिफ्ट कर ली हैं। शाम तक अपना सारा काम खत्म कर लेंगे और उसके बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। वहाँ इप्सिता उदयवीर के साथ आएंगी और हम उन्हें अपने साथ ही मुंबई ले जाएंगे और अपने साथ ही वापस लाएंगे। मासा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो सारी तैयारी पहले ही कर ली है आपने, हमें बताए बिना ही? अभिमन्यु को अपनी माँ की ये बात तारीफ से ज़्यादा ताने की तरह लगी, इसलिए वो सफाई देते हुए बोला, अरे नहीं मासा, ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो आपको पहले ही बताया था ना, हम वैसे भी मुंबई वाले प्रोजेक्ट के लिए निकलने वाले थे, तो इस समय हमने अपना सारा शेड्यूल क्लियर रखा था ताकि मुंबई जाकर हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो और हम काम पर फोकस कर पाएं। अभिमन्यु की बात सुनकर उसकी माँ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ हमें याद है, ये बताया था आपने, और ये बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन है आपका, हमें आपसे यही उम्मीद थी। और हाँ, याद रखिएगा अभिमन्यु, वो आपकी होने वाली पत्नी है, आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा, ध्यान रखिएगा कि उन्हें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभिमन्यु ने धीरे से नज़र नीचे झुकाते हुए कहा, मासा हम आपकी बात समझ रहे हैं, हम उनके साथ ही रहेंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे, हम उन्हें अपने साथ ही रखेंगे, और हमने अगर उनके पापा से उनकी जिम्मेदारी ली है तो हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। मासा ने अभिमन्यु के हाथ पर हाथ थपथपाते हुए कहा, हमें आपसे यही उम्मीद है। नाश्ता खत्म करने के बाद अभिमन्यु सीधे घर से अपना सामान लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। जैसा कि मासा से कहा था, उसने अपनी सारी मीटिंग्स शाम होने से पहले ही खत्म कर ली थी और बाकी सारा काम अपने कंपनी के मैनेजर्स को समझा दिया था। वो फ्लाइट के समय से 1 घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया था। उसने देखा कि उदय इप्सिता को लेकर पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद था।
इप्सिता ने ब्लैक कलर की डेनिम जीन्स, लाइट पिंक कलर का क्रॉप टॉप और एक लॉन्ग जैकेट पहना हुआ था। उसने अपने बाल खुले रखे थे और हल्का एयरपोर्ट लुक वाला मेकअप किया था। सनग्लासेस उसके सिर पर लगे हुए थे। इप्सिता उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। एग्जाम देने जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो नजर आ रहा था। उदय भी उसे इस तरह खुश देखकर बहुत खुश था। वो दोनों भाई बहन अभिमन्यु के आने का इंतजार करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। अभिमन्यु जैसे ही वेटिंग रूम में पहुंचा, उसके मैनेजर उसके टिकट और चेक इन का प्रोसेस करवाने लगे। अभिमन्यु उदय और इप्सिता के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, हमें लगा शायद हमें आप लोगों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग तो पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। उदय अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ पलटकर देखते हुए बोला, कुमार सा अब क्या बताऊं, मेरी इशी तो अपने एग्जाम देने की खुशी में इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि इसने तो हमें शाम के 5 बजे से ही कॉल करना शुरू कर दिया था और हम इसकी वजह से अपना काम भी जल्दी जल्दी खत्म करके आए हैं। इप्सिता उदय का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में बोली, भाई ये सब क्या बोल रहे हैं आप। उदयवीर ने कहा, सच ही तो बोल रहे हैं। उदय अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, खैर चलिए फ्लाइट का समय होने वाला है, हमें चेक इन करना चाहिए। इप्सिता ने सिर हिलाया। अभिमन्यु ने कहा, आपका सामान। उदय ने कहा, पहले ही इशी का सामान हमने लगेज एरिया में पहुंचा दिया है। अभिमन्यु उदय की बात सुनकर ज्यादा कुछ नहीं बोला। तभी उदयवीर ने कहा, कुंवर सा मेरी इशी का ध्यान रखिएगा, वैसे हम जानते हैं हमें बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने भाई होने का फर्ज अदा करेंगे हम और आपसे ये बात जरूर बोलेंगे कि प्लीज मेरी इशी का ध्यान रखिएगा।
अभिमन्यु ने उदय के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए कहा, बेफिक्र रहिए आप उदयवीर, इप्सिता अब से हमारी जिम्मेदारी है। इप्सिता जो अभी तक अभिमन्यु के बगल में चल रही थी, अभिमन्यु की बात सुनकर चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। जिस तरह से सब अभिमन्यु से उसका ध्यान रखने के लिए कह रहे थे, इप्सिता को वो चीज़ अजीब लग रही थी। वो तो हॉस्टल में इतने दिन अकेले भी रही है और खुद भी अपना ध्यान रख सकती है, लेकिन फिर भी सब इस तरह अभिमन्यु को बार बार ये बात याद दिला रहे थे जैसे कि इप्सिता उसका कोई कीमती सामान हो और वो उसे लेकर जाएगा तो रास्ते में या फिर वहां दूसरे शहर में खो देगा, इसीलिए सब उसे संभाल कर रखने की हिदायत दे रहे थे। इप्सिता को ये सब कुछ काफी गुस्सा दिलाने वाला लगा, लेकिन जिस तरह से अभिमन्यु सिचुएशन को हैंडल कर रहा था वो उसे काफी प्रभावशाली लगा। उसने सबको मुस्कुराकर हाँ में ही जवाब दिया था। क्रमशः